ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस का काठमांडू में जारी दूसरा विशेष महाधिवेशन बढ़ाया गया कल तक के लिए। पार्टी में उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी। दलितों के अधिकार और विकास संबंधी विधेयक के प्रारूप के लिए मंत्रिपरिषद बैठक ने दी सैद्धांतिक स्वीकृति। भारत के हिमाचल प्रदेश के अर्की क्षेत्र में गैस सिलेंडर विस्फोट से सल्यान के दो परिवारों के 9 लोगों की हुई मौत। और ईरान में हफ्तों से जारी जन प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की हुई मौत, संयुक्त राष्ट्र संघ का कथन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दलितों के अधिकार तथा विकास संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देने का निर्णय किया है। कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय सार्वजनिक करने के लिए आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने बताया कि मानव तस्करी के विरूद्व राष्ट्रीय नीति 2082 को भी स्वीकृति देने का निर्णय किया गया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार के रूप में बाजरा के राम बहादुर रावल को नियुक्त करने का निर्णय किया है। साथ ही इलाम के फिकल, सुलुखुम्बु के सोतांग, बाजरा के कोल्टी और मोगू के राम तड़ी में मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय किया है। ये जानकारी संचार मंत्री खरेल ने दी। इसी तरह मंत्रिपरिषद बैठक ने म्यांमार में होने वाले निर्वाचन में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षक के रूप में माघ 9 से 12 अगस्त तक भाग लेने के लिए निर्वाचन आयुक्त डॉ जानकी कुमारी तुलाधर को स्वीकृति देने, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति को मंजूरी देने तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को स्वीकृति प्रदान करने जैसे निर्णय भी किए हैं। काठमांडू में जारी नेपाली कांग्रेस का दूसरा विशेष महाधिवेशन कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महाधिवेशन के जारी बंद सत्र में प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर चर्चा लंबी होने के कारण आज नए नेतृत्व के चयन के लिए मतदान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ये जानकारी विशेष महाधिवेशन प्रचार प्रसार उपसमिति के संयोजक सुहास पोखरेल ने दी। रविवार से जारी महाधिवेशन का बंद सत्र कल से शुरू हुआ था। बंद सत्र में नेपाली कांग्रेस के दो महासचिव गगन कुमार थापा और विश्व प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर प्रतिभागियों की वक्तव्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों के उत्तर देने में महासचिवों को समय लगने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। ये जानकारी संयोजक पोखरेल ने दी। इससे पहले आज ही नए नेतृत्व के चयन के लिए निर्वाचन समिति के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी द्वारा सार्वजनिक निर्वाचन कार्यतालिका के अनुसार आज शाम 9 बजे से मतदान का समय तय किया गया था। इसी बीच नेपाली कांग्रेस में उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय बातचीत भी चल रही है। भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित अर्की क्षेत्र में गैस सिलेंडर विस्फोट होने से 9 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई है। संचार माध्यमों के अनुसार मृतक सभी सल्यान जिले की सिद्ध कुमाख गांवपालिका 2 टाकुरा के 2 परिवारों के सदस्य हैं। मृतकों में 33 वर्षीय धन बहादुर बीका, उनकी पत्नी 32 वर्षीय कविता बीका, 16 वर्षीय बेटी राधा बीका, 10 वर्षीय बेटी रेणुका बीका और 22 माह का बेटा राजन बीका शामिल है। इसी तरह दूसरे परिवार के 46 वर्षीय काशीराम बीका, उनकी पत्नी 32 वर्षीय टीका बीका, 11 वर्षीय बेटी अनुबीका और 7 वर्षीय बेटा किरण बीका की भी मौत हुई है। ये जानकारी सिद्ध कुमाख गांवपालिका 2 के वार्ड सदस्य लक्ष्मी बीका ने दी। पुलिस के अनुसार जिस कमरे में वे सो रहे थे वहां रखा गैस सिलेंडर बीती रात अचानक विस्फोट हो गया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। वे पिछले लगभग 2 वर्षों से रोजगार के सिलसिले में भारत में रह रहे थे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के केन्द्रीय सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नेकपा के केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाडा में आज आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पार्टी के संयोजक पुष्प कमल दहाल प्रचंड और सह संयोजक माधव कुमार नेपाल ने शपथ ली तथा अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई। संयोजक प्रचंड और सह संयोजक नेपाल को वरिष्ठ सदस्य नंद कुमार प्रसाई ने शपथ दिलाई। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित अन्य दलों के एकीकरण से नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी का गठन हुआ है। नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी में कुल 2499 केन्द्रीय सदस्य होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पार्टी के संयोजक प्रचंड ने कहा कि पुराने तरीके से बदली हुई परिस्थितियों का सामना नहीं किया जा सकता, इसी कारण पार्टी का एकीकरण और रूपांतरण किया गया है तथा पार्टी एकता को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन के बाद नई पीढ़ी सामाजिक न्याय और समृद्धि चाहती है और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर रही है, इसलिए ऐसा समाज बनाकर ही छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल, नागरिक पार्टी और नेपाल हाउस पार्टी के बीच पार्टी एकीकरण हुआ है। राप्रपा के केंद्रीय कार्यालय धूमबाराही में आज आयोजित विशेष कार्यक्रम में तीन दल के शीर्ष नेताओं ने एकीकरण की घोषणा की। एकीकरण के बाद नई पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का ही नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह कायम रखने की सहमति हुई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने नेपाली पत्रकारिता में गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सूचना तथा प्रसारण विभाग द्वारा आज आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री खरेल ने सत्य तथ्य और विश्वसनीयता के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान पर आधारित पेशेवर पत्रकारिता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नेपाल के राजनीतिक दलों के कारण ही युवा पीढ़ी को विद्रोह करने की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये बात पूर्व सांसदों ने रेखांकित की है। पूर्व सांसद मंच द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित नेपाल की वर्तमान स्थिति के समीक्षा और हमारी जिम्मेदारी विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं कानून विशेषज्ञ राधे श्याम अधिकारी ने स्वीकार किया कि नेपाल में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक कानून बनाने में विधायक असफल रहे हैं। अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पूर्व सांसद लीलामणि पोखरेल ने नेतृत्व विहीन जनजी आंदोलन द्वारा अपनाए गए अलग स्वरूप की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी निर्वाचन में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा और अत्यधिक बल प्रयोग पर गहरी चिंता जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अधिकतम संयम बरतने और अनावश्यक या असंगत बल के इस्तेमाल से बचने की अपील की है। उन्होंने शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति, संगठन और सभा के अधिकार के पूर्ण सम्मान की मांग की है। 8 जनवरी से इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद होने के बाद संचार सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया गया है ताकि लोगों तक सूचना पहुंच सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इसराइल दंगे भड़का रहे हैं और हिंसा करा रहे हैं। विदेश मंत्री ने इसे आतंकी युद्ध बताया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस का काठमांडू में जारी दूसरा विशेष महाधिवेशन बढ़ाया गया कल तक के लिए। पार्टी में उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी। दलितों के अधिकार और विकास संबंधी विधेयक के प्रारूपण के लिए मंत्रिपरिषद बैठक ने दी सैद्धांतिक स्वीकृति। भारत के हिमाचल प्रदेश के अर्की क्षेत्र में गैस सिलेंडर विस्फोट से सल्यान के दो परिवारों के 9 लोगों की हुई मौत और ईरान में हफ्तों से जारी जन प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र संघ का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।